भाव दीपिका लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंता, नमो सिद्धां, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुं। स्वभाव विभाव परभाव को ज्ञाता सम्यक ज्ञान, ताकाधारकता सुपुनी नमो चित्त धरिर्या। पंडित श्री दीपचंद जी कासेवाल लिखित यह भाव दीपिका नाम ग्रंथ है, जिसमें जीव के 5 असाधारण भावों की विस्तार से चर्चा की है। औदयिक भावाधिकार में अंतर अधिकार देख रहे हैं हम, गति भाव अंतर अधिकार देखा था, अब मिथ्यात्व भाव अंतर अधिकार देख रहे हैं। उसमें हमने देखा था ये मिथ्यात्व जो है विपरीत अभिनिवेश, उसको मिथ्यात्व भाव कहा। यानी जो 7 तत्व जो है प्रयोजन भूत 7 तत्व, उसमें अयथार्थ श्रद्धान जो है वही मिथ्यात्व है। उसके हमने 2 भेद देखे थे, गृहित और अगृहित। अगृहित जो है वो अलग पद्धति से बताया था, इसमें परद्रव्य, परगुण और परपर्याय में अहंकार और ममकार, तो अहंकार के भी बातें बताई उन्होंने, ममकार भी विस्तार से बताया। और भी उन्होंने एक बात बताई थी कि जो देखने में आते हैं ऐसे पुद्गल के पर्याय उनको जुदे जुदे द्रव्य मानता है, और जो दिखते हैं उसी को स्थूल यानी उसी को सत्य मानता है, जो दृष्टिगोचर नहीं है ऐसे दूर क्षेत्रवर्ती जैसे स्वर्ग नरक है, या जो भूतकाल में हो गई है ऐसी जो चीजें हैं, इंद्रियों के अगोचर ऐसे सूक्ष्म पदार्थ है उनको मानता ही नहीं, उसका अभाव है। ये सारा ही अग्रहित मिथ्यात्व है जो अनादि के पाया जाता है, और ये तो बिना उपदेशित जिसको कहेंगे नैसर्गिक है। गृहित मिथ्यात्व में तो 6 पदार्थों के कारण, देव गुरु धर्म आपता आगम पदार्थ, ये जो मोक्ष मार्ग के 6 तत्व है उसमें अन्यथा उसके मानना होता है, तो उसकी बात अब भी हम देख रहे हैं। पहले मोक्ष के कारणभूत पदार्थों का यहाँ स्वरूप बताया है, बाद में वो गृहित क्या है उसकी बात बता देंगे। देव के स्वरूप में हमने देखा था कि संपूर्ण दोषों से रहित होता है, तो दोष 2 बताए, अज्ञान और कषाय, इससे वे रहित होते हैं, सर्वज्ञ और वीतरागी, उसकी भी हमने विस्तार से चर्चा देखी थी। अब गुरु का स्वरूप हम 30 नंबर के पृष्ठ पर देखने जा रहे हैं। गुरु नाम बड़े का है, ये लघु और गुरु 2 शब्द आते हैं ना, तो बड़े के लिए गुरु शब्द आता है। जे अहित से बचाए, जीवन को हित विषय प्रवर्तावने के कारण ताते बड़े कहिए सो ही गुरु। यानी जीवन को अहित से बचाकर उनके हित में प्रवर्तने वाले हैं, इसलिए उनको गुरु कहते हैं। ते गुरु 2 प्रकार, एक धर्म गुरु, दूजे उपकारी गुरु। जे 28 मूल गुण संयुक्त, बाह्याभ्यंतर परिग्रह के त्यागी, नग्न मुद्रा के धारक, शुद्ध रत्न त्रय रूप है प्रवृत्ति जिनकी, परम दशलाक्षणिक धर्मरूप है मूर्ति जिनकी, और बाह्याभ्यंतर द्वादश प्रकार तप विषय आरूढ़ परम दिगंबर, ते धर्म गुरु जाने। धर्म गुरु इन मात्र धर्म का उपदेश देने वाले चौथे पांचवे गुणस्थान वाले उसको नहीं कहा धर्म गुरु। नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनियों को यहाँ धर्म गुरु कहा है। तो उनके क्या क्या बताए हैं? 28 मूल गुण। ये 28 मूल गुण याद है क्या नलिन भाई?
पांच
महाव्रत,
पांच
इंद्रिय विजय,
पांच
समिति,
छह आवश्यक,
सात शेष गुण। इस तरह से ये 28 मूल गुण है। बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी। अरविंद भाई, ये बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह कितने हैं?
24।
हाँ, अभ्यंतर कितने और बाह्य कितने?
अभ्यंतर है 14।
हाँ,
बाह्य है
10। अभ्यंतर के नाम बताएंगे?
अभ्यंतर में मिथ्यात्व, मायालोक,
हाँ, और नौ नौकुशा। यानी मिथ्यात्व, क्रोधमान, मायालोक चार हो गए और नौ नौकुशा, ये हो गए अभ्यंतर परिग्रह। और बाह्य परिग्रह में
सोना
चांदी, क्षेत्र मकान,
मकान सोना चांदी, दाग दासी, वस्त्र बर्तन,
धन धन, ये है बाह्य परिग्रह। तो इन अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्यागी है, नग्न मुद्रा के धारक है। वैसे नग्नत्व वो तो उसमें सात शेष गुण में आ ही गया, फिर भी अलग से बता दिया है। और शुद्ध रत्न त्रय रूप है प्रवृत्ति जिनकी। प्रवृत्ति ने हम आचरण यानी बाह्य आचरण की बात करते हैं, परंतु ये कौन सा आचरण है? तो अंतरंग में स्थिरता रूप जो है वही उनका आचरण है, वही उनकी प्रवृत्ति है। पेज नंबर 30। हिंदी 29। परम दश लाक्षणिक धर्म रूप है मूर्ति जिनकी। कितने धर्म है उनके? हाँ, धर्म एक ही है, उसके लक्षण 10 है। 10 प्रकार से उसका स्वरूप बताया है, इसलिए दश लाक्षणिक धर्म रूप मूर्ति बताए। साक्षात उसकी मूर्तिमान तो वो दश लक्षण धर्म पालते हैं, इसलिए उसी की मूर्ति ऐसा कहने में आता है। और द्वादश प्रकार के तप के धारक है, इसलिए बाह्य अभ्यंतर द्वादश प्रकार, बहिरंग तप और अंतरंग तप मिलकर 12 प्रकार के होते हैं। वो तप विषय आरूढ़, ये तो द्वादश प्रकार जो बताए हैं 12 प्रकार, ये तो बाह्य की अपेक्षा 12 प्रकार से तप होता है। परंतु इन सब में निश्चय रूप जो तप है, तो अंतरंग में प्रतपन जो है, स्थिरता जो है, वही निश्चय तप है। ऐसे जो परम दिगंबर उनको धर्म गुरु कहते हैं, ये गुरु का स्वरूप बताया। दो प्रकार के गुरु बताए थे ना, एक धर्म गुरु और उपकारी गुरु, मिला माधवी? हाँ, अभी उपकारी गुरु की बात बताएंगे। उपकारी गुरु दो प्रकार का है, एक धर्म उपकारी गुरु और दूसरा लौकिक उपकारी गुरु। यानी धर्म में भी उपकारी गुरु बताए और दूसरे लौकिक जो कोई अन्य विषय उनके जो हमें शिक्षा देते हैं वो लौकिक उपकारी गुरु। तहा धर्म उपकारी गुरु तीन प्रकार है, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और विद्या गुरु। दीक्षा देने वाले ने व्रतों को जो ग्रहण कराते हैं वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। महाव्रत है, अनुव्रत है। अनुव्रत तथा महाव्रत के आचरणावनार हारे, आचरावन हारे, आचरण कराने वाले, हारे आने वाले, ग्रहण करावन हारे। क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो दीक्षा देते हैं, मुनि दीक्षा देते हैं या श्रावक के जो अनुव्रत आदि की दीक्षा देते हैं, इसको हम कहीं प्रतिमा देते हैं। प्रतिमा देना है नहीं क्या, वो जीव ग्रहण करता है स्वयं ही, परंतु उसको ऐसे विधि पूर्वक वो यानी प्रतिज्ञा, हाँ वो प्रतिज्ञा लेता है स्वयं कि मैं ऐसा आचरण करूं। तो आचार्य
के पास,
आचार्य के पास। तो ऐसे चतुर्विध संघ में बड़े महामुनि ते दीक्षा गुरु कहिए। देखो आपने शायद सुना होगा, बड़े बड़े जो कोई आचार्य हुए हैं या हमारे ग्रंथकार जो कोई मुनिराज हुए हैं, तो उनके दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं। गोमट सार में भी हम पढ़ते हैं ना, उनके ये दीक्षा गुरु थे, ये उनके शिक्षा गुरु थे। बहुरी, जिन प्रणीत मार्ग के उपदेश देनहारे थे शिक्षा गुरु।
उपाध्याय
कहेंगे या अन्य भी आचार्य हो गए, अन्य आचार्य जिनके पास इन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि अलग अलग संघों में भी जाते रहते हैं वैसे निराज, तो जिनके पास उन्होंने ग्रंथ पढ़े वो शिक्षा गुरु। और जिन प्रणीत शास्त्र के पढ़ावन हारे थे विद्या गुरु। जिन प्रणीत मार्ग के उपदेश देने वाले शिक्षा गुरु, और जिन प्रणीत शास्त्र के पढ़ाने वाले थे विद्या गुरु। क्या कहते हैं? शिक्षा गुरु में जिन प्रणीत मार्ग के उपदेशन हारे शिक्षा गुरु, ये आचार्य भी हो सकते, उपाध्याय भी हो सकते जिनके पास। हाँ, अब लौकिक गुरु पांच प्रकार के हैं। कुल गुरु, माता पिता, पितामह, पितामह समझते क्या है? ग्रैंडफादर। पितामह यानी पिताजी के पिताजी, और माता के पिता को क्या कहते हैं? पितामह वैसे मातामह। हिंदी में नाना कहते हैं ना, दादा और नाना। माता पिता, पितामह, दादी, बड़ा भ्राता, भ्राता समझते हैं, भातृवधू, महावर्षण, इसलिए समझते। तो टीवी देखने का कुछ तो फायदा हुआ क्या? काका काकी, बड़ी भगिनी, बड़ी भगिनी का भरतार, नाना नानी, मामा मामी, पिता की भगिनी फूफा, माता की भगिनी मौसी, रोजू मौसी हुई, रो मौसा, इत्यादि कुल गुरु है। यानी कुल में जो बड़े है वो कुल गुरु कहलाएगा। गुरु यानी बड़े, हमने देखा था ना, गुरु किसको कहना है? बड़े का नाम है गुरु। तो ये सारे हमारे से बड़े है, तो ये सारे क्या हुए? कुल गुरु हो गए। ये कुल गुरु यानी कुल के गुरु, ऐसा नहीं लेना। हाँ, अपने फैमिली के कोई गुरु है वो ऐसा नहीं लेना उसको। ये कुल स्वामिनी जैसे कुल गुरु नहीं। हाँ, जिस बस्ती में रहे तिसका स्वामी राजाधिक ते रक्षा गुरु है। और लौकिक विद्या जाकर आजीविका होए ऐसी शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या व अनेक प्रकार की सब विद्या का सिखाहन वाला ते विद्या गुरु। अनेक विद्याएं होगी ना, अभी जो कोई इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, या जो कोई है अलग अलग, शस्त्र हो या शास्त्र हो या अन्य अनेक प्रकार के विद्या गुरु।
इसमें
नहीं, भली शिक्षा देना रहा शिक्षा गुरु, लौकिक भली शिक्षा देना रहा वो शिक्षा गुरु, वो आगे की लाइन में है। उसमें क्या लिखा आपको?
लौकिक विद्या जैसे आजीविका चलती है, ऐसी शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या वो अन्य अनेक प्रकार की समस्त विद्याओं को देने वाले भी शिक्षा गुरु है।
और फिर विद्या गुरु किसको कहा?
विद्या गुरु तो कहा ही नहीं यहाँ, किसको आगे जो आगे विद्या गुरु कहा था?
रक्षा गुरु उसके पहले आया।
तो पांच प्रकार कौन से बताए?
रक्षा गुरु।
नहीं, लौकिक पांच प्रकार के कौन से गुरु बताए? ऊपर लिखा था ना पांच प्रकार है लौकिक गुरु, तो ये तो बोर्ड लेके लेटर में लिखा है कुल गुरु, रक्षा गुरु, फिर
हमारे यहाँ शिक्षा गुरु,
फिर उसके बाद
धर्म गुरु और लौकिक गुरु।
अरे धर्म गुरु तो अलग से बताए थे, उसमें धर्म गुरु कैसे डाले?
यहाँ एक रक्षा गुरु लिखा है।
धर्म गुरु
रक्षा गुरु है,
पूजा कराते हाथ जोड़कर अष्टांग नमस्कार करना।
नहीं नहीं नहीं, ये धर्म गुरु की पूजा करनी चाहिए,
धर्म गुरु की
वो बात अलग है, वो बात अलग है। मैंने इसमें चार ही बताया आपने। देखो मैं पढ़ती हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो मूल तो भंडारी है, इसका हिंदी बाद में किया गया है, उसमें जो कुछ देखो ये तीसरा जो है ना, शस्त्र शास्त्र अनेक प्रकार की सब विद्या सिखाने वाला, विद्या सिखाने वाला वो विद्या गुरु है। फिर आजीविका देनहारा ते आजीविका गुरु, ये है कि उसमें
ही सीधा आ गया ना, लौकिक विद्या जिससे आजीविका चलती है, ऐसे ऐसी शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या
वो तो है, उसको उस विद्या गुरु में लिया जाकर ही आजीविका होए,
वो वाक्य ही नहीं है।
अब ये आजीविका देने वाला अलग है,
वो वाक्य नहीं है,
वहाँ आजीविका के लिए उसने विद्या सिखाई, वो विद्या गुरु यानी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपनी भाषा में जो अलग अलग विद्या सिखाता है वो विद्या गुरु, और आजीविका को देने वाला,
आजीविका को देने वाला
यानी कोई नौकरी देने वाला, ऐसे समझो ना। तो वो भी बड़ा है ना, तो उसको आजीविका गुरु का। और लौकिक भली शिक्षा का देनहारा थे शिक्षा गुरु, ये कहे जे गुरु तिनको यथा योग्य पूजना विनय करना नमस्कार आदि करना, अब ये लौकिक की बात नहीं है, यहाँ एक्चुअली नया पैराग्राफ होना चाहिए था। ये कहे जे गुरु कौन कौन से बताएं? नहीं नहीं नहीं, पहले में पहले वो तो धर्म गुरु बताए थे ना, 28 मूल गुण के धारक वगैरह वगैरह। तो कहते उनको योग्य पूजना विनय करना नमस्कार आदि करना, इन बिना और को गुरु मानी विनय करना सो मिथ्या तो भाव है। और लौकिक प्रयोजन जाने किसी का यथा योग्य विनय करना सो मिथ्यात्व ना है। इनमें से जो हमने देखे ना धर्म गुरु जो है, कौन? नग्न दिगंबर, 28 मूल गुण के धारक, तो उन्हीं को योग्य पूजा विनय नमस्कार उनके होगी। लौकिक प्रयोजन के लिए हम नमस्कार करेंगे, जैसे हमने कुल में जो बड़े हैं उसको भी हम नमस्कार विनय करेंगे उनको, परंतु वैसी पूजा नहीं होगी जैसे धर्मगुरु की, यानी मुझे राजों की होती है। यानी लौकिक राजा को भी नमस्कार करेंगे या अपने घर के बड़े लोगों को नमस्कार करेंगे, वो मिथ्या तो नहीं है, वो मिथ्या तो नहीं है।
तो अभिनय क्या
है?
अभिनय
किसका?
नहीं करोगे तो
ये देखो, ये जो गुरु बताए ना नग्न दिगंबर, तो उनको ही नमस्कार करना, यानी उनके विनय करना, कैसे? गुरु मानकर, मुनि मानकर, और उनके बिना अन्य को गुरु मानकर विनय करना। गुरु मानकर विनय करना ही महत्व की बात है, केवल विनय करने को मिथ्या तो नहीं कहा, उनको धर्म के गुरु मानकर विनय करना ये मिथ्या है। कोई शिथिलाचारी हो गया और उनको हम धर्म के गुरु मानकर विनय करते हैं तो ये मिथ्या तो हुआ। परंतु हमारे घर में बड़े है कोई माता पिता, और मालूम है वो बिल्कुल ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले, फिर भी हम बड़े मानकर उनको हम नमस्कार करते हैं, वो मिथ्यात्व नहीं है।
समय दृष्टि वो करेगा,
करेगा समय दृष्टि, अपने माता पिता को नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा? अपने बड़ों, वो राजा को भी नमस्कार करेगा। ये मुसलमान राजा होगा तो क्या समय दृष्टि उसको ना उसके यथायोग्य विनय करेगा कि नहीं करेगा? परंतु वो धर्म का गुरु मानकर उसको नमस्कार नहीं करेगा, उसके मान्यता में क्या है उसकी बात।
देखो यहाँ पर मूल में दो गुरु के दो प्रकार होते हैं,
एक धर्मगुरु एक लौकिक गुरु,
धर्म उपकारी गुरु और दूसरा लौकिक उपकारी गुरु।
वो तो बाद में बताए, उपकारी गुरु में दो बताए।
धर्म उपकारी गुरु में हमने दीक्षा शिक्षा विद्या गुरु को बोलिए, जो
सुनी है जो आप जो कह रहे हैं, यानी वहाँ आचार्य उपाध्याय और साधुओं को और जो लौकिक गुरु जो है उनके पांच भेद बताए। अब इनमें ये कह रहे हैं कि ये कहे जो गुरु ये कौन से पहले वाले धर्म वाले उनका योग्य पूजना विनय करना नमस्कार आदि करना इन बिना और को गुरु माना, यानी ये कुल गुरु रक्षा गुरु विद्या गुरु गुरु मानी विनय करना सो मिथ्या तो और, यानी ये पांच जो बताए हैं उपकारी गुरु उनके
वो लौकिक है
धर्म हाँ। उपकारी गुरु वत उनका विनय करना ये मिथ्या तो
यानी उनको धर्म के यानी धर्म के संबंध में गुरु मानकर नमस्कार करना उनके विनय करना ये तो मिथ्या तो है। आप यथायोग्य उनके साथ अच्छी बातें करो ना, उसकी बात नहीं है। जय जिनेन्द्र करो, उसको हाथ जोड़ो, परंतु वो तो अगर वो धर्म के संबंध में उसको गुरु मानेंगे तो ये मिथ्या तो है। तथा धर्म गुरु की धर्म गुरु है ना, वो उपकारी गुरु से भी ऊपर जो धर्म गुरु बताया था, धर्म गुरु की अष्ट द्रव्य करी पूजा करनी, हाथ जोड़ी अष्टांग नमस्कार करना, वहां पंचांग नमस्कार करना, आठों अंगे ने घुटने टेक कर ये टेक करिए तो आठों अंग वो अष्टांग कहते हैं, और पंचांग ने के लिए झुककर नमस्कार करना वो पंचांग हो गए। महाभक्ति पूर्वक चार प्रकार दान देना, ये चार प्रकार के दान मालूम है कि मधु
शास्त्र दान आहार दान
हाँ औषधि दान और अभय दान चारों प्रकार का दान देना, सर्वोपरि सत्कार करना विनय करना। ये जो मुनिराज है उनकी बात है, उसको धर्म गुरु का बहुरी लौकिक गुरु की यथा योग्य भेंट करनी, विनय पूर्वक हाथ जोड़ना और मस्तक पर हाथ धरी पंचांग नमस्कार करना, जिसे हम ऐसा करेंगे पीछे हाथ जोड़ी सत्कार करना, यथा योग्य विनय करना, पीछे नहीं बाद में। अतः धर्म तत्व कहिए, देखो हमने क्या देखा था, मोक्ष के कारणभूत पदार्थ कितने हैं, देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थ, ये मोक्ष मार्ग के कारण छह तत्व है ऐसा बताया, छह पदार्थ कहो छह तत्व कहो किसके मोक्ष मार्ग के या मोक्ष के कारण। अब उनमें से हमने देव का स्वरूप देखा है, गुरु का स्वरूप देखा, अब धर्म तत्व क्या है उसको बता रहे हैं। तो धर्म दो प्रकार है, एक निश्चय धर्म और दूजा व्यवहार धर्म। तहां निश्चय धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, वत्थ सहावदम, जहां राग द्वेष रहित अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ता विषय ने उसमें स्थिर होना निश्चय धर्म है। यानी वस्तु का स्वभाव यानी हमारा स्वभाव कैसा है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, तो राग द्वेष रहित उसी में स्थिर होना ये निश्चय धर्म है। वस्तु का स्वभाव तो कायम ही है, और ये जो प्रकट करने रूप जो धर्म है उसकी बात है, याही का नाम चारित्र है, इसको धर्म कहो इसी को चारित्र कहो। ये हमें पूछते हैं धर्म कौन से गुण की पर्याय है, तो ये चारित्र गुण की है। बहुरी व्यवहार धर्म दो प्रकार है, तिसी निश्चय धर्म का व्यवहार करिए तब धर्म के दो भेद हो है, यानी निश्चय धर्म के साथ वाले जो है उसके दो भेद बताए, देश संयम और सकल संयम। जहां मिथ्यात्व छोड़ी कषाय विषय और पांच पापन रूप अंतरंग परिणामन का एक देश त्याग, क्या कहते हैं, मिथ्यात्व को तो पूरा ही छोड़ा, कषाय विषय और पाप सभी पांचों पाप इन रूप जो अंतरंग परिणाम है उनका एक देश त्याग सो देश संयम, देश यानी एक देश यानी पार्षद, व इस धर्म को कारण बाह्य अनुवृत्तादिक पांच, गुणव्रत तीन, शिक्षाव्रत चार, इन द्वादश व्रत को ग्रहण सो भी देश संयम करिए। पहले में पहले अंतरंग परिणामों को देश संयम कहा और उसके सहकारी बाह्य कारण जो बताए हैं कौन से, पांच अनुव्रत है, तीन गुणव्रत है, चार शिक्षा व्रत है, ये जो बारह व्रत है उसको देश संयम कहते हैं। जातई यहाँ कारण विषय कार्य को उपचार करी, इनको संयम करिए। कार्य क्या हुआ, संयम भाव हुआ, तो उसके कारण, कारण यानी कैसा कारण है, ये भी निमित्त कारण, सहचारी कारण उसके साथ पाया जाता है, तो उसको क्या कहा, उसमें उपचार से उसको भी संयम कह दिया। बहुरी जहां सर्व प्रकार बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व कषाय विषय और पांच पापनी का त्याग सो सकल संयम है। ऊपर एक देश त्याग था, मिथ्यात्व का तो पूरा छोड़ा था, यहाँ विषय कषाय भी विषय भी और पांचों पाप वो संपूर्ण त्याग है, सो सकल संयम है। ये तो निश्चय से वही संयम है। अब व्यवहार किसको कहेंगे, व्यवहार सकल संयम, तो सकल संयम के कारण बाह्य 28 मूल गुण व 84 लाख उत्तर गुण तिनका ग्रहण सो भी व्यवहार सकल संयम है, उसको भी व्यवहार से सकल संयम कहने में आता है। परंतु ये निश्चय कौन सा और व्यवहार कौन सा है हमें मालूम होना चाहिए। कथन तो होगा परंतु उसके पीछे की अपनी मान्यता क्या है, कि हम केवल उसी को संयम मानते हैं कि जहां अंतरंग में निश्चय संयम है उसके साथ वाले ये व्यवहार संयम कहलाते हैं। आगे आप तत्व कहिए। अभी तक हमने देव गुरु और धर्म देखा, अब आप तो आगम और पदार्थों की बात करेंगे। जीव का परम हित जो मोक्ष, हमें हित किस में लगता है, पैसा कमाए, हाँ हाँ करोड़पति बनने में, अच्छा। तो जीव का परम हित जो मोक्ष, ताका उपदेष्टा, उपदेष्टा ने उपदेश देने वाला सो आप तक कहिए, उसे आप तक कहते हैं। तो आपके मालूम है कौन है आप तक, किसको कहेंगे आप, यानी अरिहंत जो उपदेश देते हैं उनको आप कहेंगे, सिद्धों को नहीं आप कहेंगे। सो आप तो दो प्रकार है, एक मूल आप्त और दूजा उत्तर आप्त। प्रत्यक्ष भूत भय है सकल पदार्थ जिनको, इसके लिए मुझे एक शब्द चाहिए नितिन भाई, प्रत्यक्ष भूत भय है सकल पदार्थ जिनको, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, मैंने जो वाक्य पढ़ा उसके लिए जानते हैं, उसके लिए एक शब्द बताने आप, और कोई मालूम, सर्वज्ञ, हाँ है ना, प्रत्यक्ष भूत भय है सकल पदार्थ जिनको, यानी वो सर्वज्ञ है। और नाश को प्राप्त भय है चार घातिया कर्म जाके, चार घाती कर्म जिनके नष्ट हुए है। ताकरी अनंत चतुष्टय को प्राप्त भय है, यानी चार घातिया कर्मों का नाश होने से जिनके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है, ऐसे श्री अरहंत देवाधिदेव द्वादश सभा मध्य तिष्ठ करी। ये द्वादश सभा क्या है, बारह सभा, सब शरण में जो बारह सभा होती है, मोक्ष मार्ग का उपदेश करे है ते मूल आपते हैं, तीर्थंकर को ही आपते कहा है। अन्य भी जो कोई अरिहंत जो उपदेश देने वाले हो गए जिनकी दिव्य ध्वनि होती है उनको भी आप कहेंगे, पर मुख्यतः तीर्थंकर उनको आपते कहा, क्योंकि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश उन्हीं के द्वारा चला आ रहा है। हाँ बारह सभा में क्या क्या आता है बोलो। समोसरण की रचना तो मालूम होगी ना, बहुत सारे कोट होते हैं साथ, फिर अंदर जहाँ सभा होती है बीच में तो गंध कुटी है, भगवान विराजमान है, और गोलाकार में बारह ऐसे क्या खाने क्या कहेंगे उसको,
डिपार्टमेंट
नहीं ऐसे ऐसे अलग अलग
बारह
विभाग हो गए ऐसे, यानी गोलाकार हाँ कौन कौन बैठकर तो बोलेंगे आप।
हाँ बैठते हैं, एक में श्रावक अलग है, श्राविका अलग है, तीन हो गए
आरिका, मुनि आरिका श्रावक श्राविका है ना,
पांच हो गए ना,
क्या श्राविक आरिकाओं के पीछे श्राविका बैठती है ऐसा कुछ है नहीं,
वो अलग अलग
ठीक है। तिरियंच की एक बात है, तिरियंचों को एक अलग, और फिर देवों में भवनवासी अभ्यंतर वैमानिक उनके अलग अलग कोठे हैं, और उनकी देवियों के अलग अलग
है, देवियों के साथ में
देव देवी एक है, अच्छा फिर भवनवासी के अलग और
वो अलग अलग,
इससे बारह होते हैं सब।
श्रावक
और मनुष्य है नहीं, श्रावक और श्राविका अलग, मुनिराज और आरिका अलग होती है,
मनुष्य भी होगा
हो गए ना,
उनका अलग होता
नहीं, नहीं ऐसे थोड़े वहाँ वो ये समय दृष्टि बैठेंगे,
मनुष्य और श्रावक दोनों साथ में बैठेंगे,
अरे मनुष्य में ही श्रावक श्राविका बैठती है,
एक मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि मनुष्य श्रावक के साथ बैठेगा,
श्रावक यानी पांचवा गुणसान ऐसा मत समझना, ये जनरल श्रावक, यहाँ तो हम प्रथमानुयोग के श्रावकों को बता रहे हैं, यानी पुरुष और महिलाएं, यहाँ हुआ था अपना मोक्ष मार्ग का उपदेश करे मूल आप तक। देखो कोई भी ग्रंथ शुरुआत करते हैं ना, तो पहले जब ग्रंथ स्वाध्याय शुरू करते थे तो अस्य ग्रंथ करता रहा मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा, फिर उनके उपदेश के अनुसार या जो जो कुछ ग्रंथों की रचना ऐसा हो के बाद में इनका नाम लेंगे कि जिन्होंने ये ग्रंथ की रचना की, इवन समय सार भी पढ़ना है तो पहले में पहले सर्वज्ञ भगवान को कहेंगे, फिर गणधर देव को कहेंगे, फिर वो उनके आचार्यों की परंपरा से अभी यहाँ कुंदकुंद आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा है, फिर आगे कहेंगे ये श्रोतारा श्रावधानतया श्रृण्वन्तु सावधान होकर सुनो, इतने सब पढ़कर फिर ग्रंथों की शुरुआत होती थी स्वाध्याय की। तो यहाँ भी कहते मूल आप्त है, ये तो तीर्थंकर भगवान मूल आप्त है, बहुरी तिन्ही के अनुसार कथन करण हारे, ये मुख्य बात है, अपने मन से नहीं, तिन्ही के अनुसार कथन करण हारे, ऐसे सम्यक दर्शनादिक के धारक, सम्यक दर्शनादिक यानी क्या, समय दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक गणधरादिक ते सर्व उत्तर आप्त कहिए, यानी गणधर है, अन्य आचार है, आचार्य उनकी परंपरा है, जो कुछ है वो सब उत्तर आप्त कहते हैं, बहुरी सम्यक दर्शनादिक के धारक जिन प्रणीत शास्त्र के ज्ञाता कषाय रहित वक्ता ऐसे गृहस्थ ते सर्व उत्तरोत्तर आप्त जानना, उत्तर भी नहीं उत्तरोत्तर, क्या कहा मूल आप्त सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर, उत्तर आप्त में गणधर है आचार्य है उनकी परंपरा है, और फिर उत्तरोत्तर आप्त कौन है जो सम्य दृष्टि है और जिन प्रणीत शास्त्र के ज्ञाता है और जो कषाय रहित वक्ता है उनको ले लिया, ये तो लोग के लिए कुछ भी वक्ता कुछ भी कहेंगे, सामने वाले को जो अच्छा लगे वो बताएगा और उसमें कुछ हेरा फेरी करके बताएगा,
मन पसंद फिर से तो भी आएगा
ना, तो भी आएगा ना इसे, यानी कोई यश चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई यानी यश का लोभी हो, पैसे का लोभी हो और भी कुछ कुछ, और वो जो कुलिंग रूप, कुलिंग पहले लिया जनलिंग हा? और ये कुलिंग रूप मिथ्या दर्शन के धारक है और यथार्थ जिन प्रणीत शास्त्र के अर्थ को कहे है तो पन भी वे आप्त नहीं। क्या कहा? यथार्थ जिन प्रणीत शास्त्र को कह रहे हैं, परंतु जो मिथ्या दृष्टि है परंतु उसको आप्त नहीं कहेंगे, ताते उनके मुख तक ही कहा अर्थ प्रमाण नयादिक करी व आमनाए मिलाए सिद्ध करी ग्रहण करण। क्या कहते हैं? उन्होंने जो बताया है तो कहते हैं वो प्रमाण से, नये से और आमनाए ने मूल जो परंपरा चल रही है उसको मिलान करके उसको ग्रहण करना। उसको ग्रहण नहीं करना वैसी बात नहीं है, जिन यथार्थ जिन प्रणीत अर्थ को कहते हैं तो जो मूल सर्वज्ञ प्रणीत जो धारा चली आ रही है उसके साथ मिलान करके देखना। और इतनी शक्ति न हो तो उनके मुख तक ही शास्त्र उपदेश न सुनना, उनके कहे अर्थ की बिना समझे यू ही प्रतीति न कर लेनी, यानी उसका सही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, यही बात है। क्योंकि उसमें से देखो ये ऐसा क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि आजकल भी प्रवृत्ति हो रही है ना, क्योंकि सभी साधन घर में बैठे बैठे सब उपदेश सुनने को मिल रहा है टीवी पर, तो लोग कहते हैं उसमें से हम अच्छा अच्छा ग्रहण करेंगे। अरे पर तो अच्छा है कि सच्चा है कि वो सच्चा है, तो भी उसमें बराबर प्रमाण नए से बराबर बता रहा है कि नहीं रहा, तो इसमें से तो कहते कि इतनी शक्ति न हो तो मत सुनना। तो जिसका अभ्यास है तो उसको तो उसमें से निर्णय करने की पात्रता है कि ये सही क्या बता रहा है, गलत क्या बता रहा है। परंतु अगर ऐसी शक्ति अपने में न हो तो कहते अच्छा है नहीं सुने, यानी अर्थ समझकर उसको ग्रहण करना, बिना ही ऐसे ही प्रतीति मत करना उसकी, ये बात करते हैं। अब आगम तत्व कहिए है, आप का जो वचन सो आगम कहिए, केवल हमने लिखा है वो आगम ऐसा नहीं, आप का जो सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है वही आगम है। सो आगम कैसा है? प्रमाण नयादिक करी अबाधित है। पहले में पहले उसका डेफिनेशन क्या है? आप का वचन होना चाहिए, प्रमाण से और नय से अबाधित होने चाहिए, कोई प्रकार भी ना ही संभव है बाधा जिसको ऐसा जिनागम है, यानी ना ही पूर्वा पर कुछ अलग अलग कथन आता है और ना ही कोई उसको रूल आउट कर सकता है, कोई बाधा नहीं है उसमें। ताही को आगम मानना, जो प्रमाण नयाधिक करी बाधित हो सो आगम नाही। देखो ये प्रमाण नये से बाधित के अर्थ क्या है? जैसे अन्य मति कोई एकांतवादी होते हैं, देव को सर्वथा नित्य ही कहेंगे, सर्वथा अनित्य ही कहेंगे, ऐसे अन्य अन्य जो मत है वो कैसे प्रमाण से और नये से बाधित है। जाते ही यानी क्योंकि आगम केवली का वचन है, ताते बाधित हो ना है। केवली तो तीन लोक तीन काल और सभी लोक अलोक सबको जानते हैं, तो उनका जो वचन है तो वो तो सत्य है, किसी से भी बाधित नहीं हो सकता। आगम विषय तीन प्रकार पदार्थ कहे हैं, देय, हेय और उपादेय। इन तीन पदार्थन विषय जो प्रत्यक्ष प्रमाण गोचर होए ता अर्थ को प्रत्यक्ष प्रमाण करी सिद्ध करना। क्या कहते हैं? जो प्रत्यक्ष प्रमाण गोचर होए, यानी प्रत्यक्ष जो प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है, तो कहते हैं उसके प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करना। और जो अनुमान प्रमाण करी सिद्ध होए ताको अनुमान प्रमाण करी सिद्ध करना, जो अनुमान से सिद्ध हो सकता है उसको अनुमान के द्वारा सिद्ध करना, और जो आगम प्रमाण करी ही सिद्ध होए, ताकु सुनी सुनिश्चित स्वानुभव अबाधक प्रमाण करी सिद्ध करना, यानी जो आगम से ही जो प्रमाण है, आगम से जो सिद्ध होता है, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष दिखने में नहीं आता, ना ही अनुमान से जाना जाता है, आगम से ही जिसकी सिद्धि हो सकती है, आगम प्रमाण है, उसको सुनकर सुनिश्चित स्वानुभव अबाधक प्रमाण करी सिद्ध करना। कौन सा प्रमाण है? स्वानुभव प्रमाण से सिद्ध करना। कुंकुंदाचार्य ने भी लिखा है ना, अपने स्वानुभव से प्रमाण करना। तीन में जो अबाधित हो सो जिनागम जानना, और जो बाधित हो सो जिनागम न मानना। जो बाधा जिस जो बाधित हो सकता है, जो रुला हो सकता है, वो तो जिनागम नहीं हो सकता। ऐसा मानना कि जो ये प्राकृत में है, संस्कृत में है, या बड़े आचार्य के नाम करी वेष्टित है, ऐसी प्रतीति करी अर्थ का श्रद्धा न करना। जाते ही अबार अबारे ने अब कलिकाल के दोष करी पाखंडी कषाई पंडित ने करी शास्त्रनी में अन्यथा अर्थ का मेल भया है। क्या कहते हैं? इतना सब जिसको कहते ना डेंजर सिग्नल बता रहे कि शास्त्र में लिखा है, प्राकृत के ग्रंथ है, संस्कृत के ग्रंथ है, इसलिए वो सत्य ही है, ऐसा आंखें बंद करके मत मानना। गए क्यों? क्योंकि पाखंडी कषाई पंडित बहुत हुए हैं, उन्होंने प्राकृत में और संस्कृत में रचना करके बीच में जोड़ दिया अपनी ओर से। ताते नहीं, इसलिए जैन न्याय के शास्त्रनी की ऐसी आज्ञा है कि जैन न्याय शास्त्र जो है ना, ये तो बड़ा बहुत विस्तार से न्याय ग्रंथ है, जिसमें न्याय पूर्वक किसी वस्तु की सिद्धि की जाती है। सर्वज्ञ भगवान भी है कि नहीं, पहले सर्वज्ञ की सिद्धि करेंगे, हर चीज सिद्ध करके बताई है न्याय शास्त्र में। तो उसकी ऐसी आज्ञा है कि आगम का सेवन, देखो ये कुंकुंदाचार्य ने भी यही चार बातें बताई है। देखो, सेवन करना है ना आगम का अभ्यास करना, युक्ति का अवलंबन, युक्ति यानी प्रमाण और न्याय से जानना, परंपरा गुरु का उपदेश, यानी जो मूल धारा है सर्वज्ञ से जुड़ी हुई, तथा स्वानुभव, यानी सब जाके स्वानुभव में उसका प्रमाण निश्चित हो जाएगा। इन चार विशेषणी का आश्रय करी अर्थ की सिद्धि करी ग्रहण करना, यानी वो आगम में है कि नहीं है वो नए और प्रमाण से जानो, फिर परंपरा गुरु का उपदेश है कि नहीं उसको जानो, और स्वानुभव से सिद्ध करो। अन्यथा अर्थ ग्रहण किए, यानी अन्यथा अर्थ ने विपरीत अर्थ ग्रहण करने से जीव का अकल्याण हुए है। यानी इसमें अपने हित की बात है, तो हमें जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, यानी आगम तत्व जो है वो सही है कि नहीं है, प्रमाण से सिद्ध होता है कि नहीं है, परंपरा वो गुरु का उपदेश है क्या नहीं है, और उसको पढ़कर स्वानुभव से वो सिद्ध होता है, इस सब से उसको नक्की करना है, परीक्षा करना उसका। अथ पदार्थ तत्व कहिए, पद का जो अर्थ कहिए प्रयोजन, ताकू पदार्थ कहिए। पद यानी शब्द, अब यहाँ पद का अर्थ क्या लिया? पदार्थ, पद का प्रयोजन पदार्थ, तत्व कहते हैं। पदार्थ नौ प्रकार के हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य और पाप, लास्ट में डाले पद। ने जो अलग अलग शब्द बताए हैं ना, वही तत्व है, तत्वों के ही नाम है। तत्व त्व यानी उसमें उसमें उसका भाव पना, यहाँ उसको प्रयोजन बताया। इनका स्वरूप जिनागम विषय जैसा कहा है तैसा ही स्वरूप सहित ग्रहण करना, ये बिल्कुल ही लगाया उसको। क्या कहते हैं, यानी मुख्य कंडीशन क्या है, जिनेन्द्र कथित ये तत्व चाहिए, और जिस अपेक्षा है जैसा उन्होंने स्वरूप बताया है वैसा ही श्रद्धा। छड़ाला में जो का त्यों श्रद्धान बताया, ये बहुत एक ही दो यानी दो तीन शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको पकड़ा है कि जो का त्यों श्रद्धान, कि जैसा कहा है वैसा ही स्वरूप सहित ग्रहण करना, यानी अपने मति कल्पना से वो अलग कुछ नहीं, उसमें आश्रव का स्वरूप क्या बताया और संवर्ग का क्या बताया और हम क्या मानते हैं, तो कहते वो सही स्वरूप नहीं हो, तो जैसा बताया है वैसा ही चाहिए जाते। ये मोक्ष के कारण है, ये जो नौ पदार्थ कहो या सात तत्व कहो ये क्या है, इनको सही जानेंगे ये उपाधेय पहचानेंगे तो ये मोक्ष के कारण होते। आप कहेंगे आश्रय और बंध भी मोक्ष का कारण है क्या, उसको जानना ही मोक्ष का कारण, क्योंकि जानेंगे नहीं तो वो तो जो जो छोड़ने लायक है उसको छोड़ेंगे कैसे, उसको हमने पकड़ के रखा है ना, और उससे कल्याण होगा ये मान्यता है हमारी, तो कहते उसको सही जानना आवश्यक है। इसलिए जो का त्यों श्रद्धान कर, श्रद्धान में लेने की बात है, यानी आश्रय बंध होते रहेगी फिर भी श्रद्धान में हमने उसको कैसे जाना है कैसे माना है, ये महत्व की बात है। जिस स्वरूप करी तिष्ठे है तिसी स्वरूप करी ग्रहण किए सो मोक्ष के कारण हुए, यानी वो जिस रूप से है उसी रूप से उसको समझना ग्रहण करना यानी जानना, ये मोक्ष का कारण है। अन्यथा स्वरूप करी ग्रहण किए यही संसार के कारण है। क्या कहते हैं, ये नौ पदार्थ मोक्ष के कारण है कि संसार के, तो कहते यथार्थ ग्रहण किए रहेंगे तो मोक्ष के कारण, इन्हीं को उल्टा ग्रहण करेंगे तो संसार का कारण, क्योंकि हमने अजीव को ही मैं स्वयं जीव हूं माना है और आश्रव करते करते मोक्ष होगा ऐसा माना है, तो यही संसार का कारण होगा। अब जीव तत्व कहिए, ये जो पदार्थ जो है तत्व जो है उसमें से भी एक एक का स्वरूप बताएंगे। तहां जीव पदार्थ दो प्रकार का है, एक तो मोक्ष के कारण जीव और दूसरे संसारी जीव। तहां मोक्ष के कारण जीव पदार्थ नौ प्रकार के हैं, मोक्ष के कारण जीव है उनसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका, इनते भिन्न सर्व संसारी जीव पदार्थ जानना, बाकी सभी जीवों को संसारी जीव पदार्थ कहा। अजीव तत्व पांच प्रकार का है, पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य और आकाश द्रव्य। अब आश्रव तत्व कहते हैं, आश्रव
बीच का उड़ी गया, अजीव लिखा
अजीव तत्व ही नहीं
है, बत्तीस पेज पे दूसरे लाइन
है, हिंदी है ना आपका भी,
क्या
ये नई एडिशन होगी, ये कुछ रह गया होगा वो तो रह गया, वो ये नई एडिशन है ना आपकी, हिंदी पुराने।
संसारी पदार्थ जानना उसके बाद में क्या लिखा है,
अजीव तत्व पांच प्रकार के,
पांच प्रकार के
ये रह गया होगा इसलिए नए हिंदी में आया है। पांच प्रकार के, ये पांच अजीव द्रव्यों के नाम लिखना वहां, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ढुंडारी में है, हिंदी में दो बार छपे हुए हैं ना अलग अलग, हाँ ये पांच अजीव द्रव्य। अब आश्रव तत्व कह रही है, द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप परिणमन को कारण ऐसी पुद्गल कर्म वर्गणा, क्या कहते हैं, जो द्रव्य कर्म के कारण भूत कर्मण वर्गणा से द्रव्य कर्म, और नो कर्म है क्या, शरीर वन वाणी वगैरह जो है उस रूप परिणमन को कारण ऐसे जो पुद्गल की वर्गणा, उसी को कर्म वर्गणा कह दिया उन्होंने। तिनके योग द्वार करी आगमन, यानी योग के द्वारा उनका ग्रहण। योग किसको कहेंगे, कर्म नो कर्म के आकर्षण की जो शक्ति है। सो मूल आश्रव कहते हैं, और तीन के आगमन का कारण मन वचन का योग है, तात योगन को भी आश्रव कहिए। क्या कहते हैं, ये योग के द्वारा जो पुद्गल कर्म नो कर्म का आना आना है, कर्मान वर्गना कर्म रूप होना, उसको आना कहेंगे। आना इन्हें कहीं बाहर से नहीं आती है, जीव के जो प्रदेशों में खचोखच भरी हुई है उनमें से ही कर्मरूप होने योग्य जो वर्गना है वो कर्मरूप होती है, तो उसको कहेंगे हम आना। आश्रव का शब्द ही आना, तो उसको आश्रव कहेंगे। और उसका जो कारण क्या है, तो योग है। कैसा, मनोयोग वचन योग का योग, उस योग को भी आश्रव कहेंगे। आपने आश्रव अधिकार में शायद तत्वर सूत्र में आए थे ना, आश्रव दो आश्रव के क्या प्रकार है, तो योग को ही आश्रव का, और फिर वो योग सांप्रायिक और सांप्रायिक योग अलग पता है ना, कषाय सहित वाला योग और कषाय रहित योग, ऐसे दो प्रकार बताए उसमें। तो इसलिए कहते हैं यहाँ मूल आश्रव है और उसका कारण क्या है योग, इसलिए उसको भी आश्रव कहते हैं। बहुरी कर्मण विषय स्थिति अनुभाग बंध का कारण, ऐसे मिथ्यात्व और कषाय अव्रत विशेष को धरे राग द्वेष भाव, तीन को भी आश्रव कहिए। क्या कहते हैं, ये जो बंध होता है उसमें हमने देखा था चार प्रकार का होता है, कौन से चार मालूम है ना, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग। तो स्थिति बंध और अनुभाग बंध का कारण क्या है, मिथ्यात्व और राग द्वेष। तो कहते हैं मिथ्यात्व और कषाय अव्रत विशेष को धरे राग द्वेष भाव, तिनको भी आश्रव कहते हैं। ताते मूल आश्रव के भेद 13, क्या क्या भेद किए उन्होंने, मनोवचन काय के योग को उन्होंने आश्रव कहा, और मिथ्यात्व और कषाय और अवरत इनको भी आश्रव कहा, अलग प्रकार से उसका अलग प्रकार से। मूल आश्रव बताए ना, मूल आश्रव कैसे, द्रव्य कर्म और नो कर्म के परिणमन के कारण ऐसी पुद्गल वर्गणाओं का आना। तो ऐसी द्रव्य कर्म और नो कर्म, द्रव्य कर्म में 8 लिए और नो कर्म वर्गणा की जो 5 अलग अलग है, तो ये बता रहे यथा ज्ञानावरणादि 8 कर्माश्रव, 8 कर्मों का आना वो 8 कर्माश्रव, औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कर्मण, ये 5 नो कर्माश्रव, यहाँ केवल शरीर के लिए हो रहा है। बहुरी इनके कारण 57 भाव आश्रव है, ये आश्रव भावाधिकार हमने भी देखा था कर्णान युग में, उसमें भी देखा था कर्मकांड में। देखो ये कौन से, योग 15 पहले पढ़ लेते पूरे, कषाय 25, अव्रत 12, मिथ्यात्व 5, ऐसे 57। यहाँ प्रमाद को अलग से नहीं बताया है, वो तो अव्रत और कषाय में ही इंक्लूडेड है। तो उल्टा देखते हैं, 5 प्रकार का मिथ्यात्व बोलेंगे अब, क्या याद नहीं है आपको, याद है, हाँ हाँ जोर से जरा बराबर है बोलो, नहीं नहीं नहीं, मिथ्या तो क्या, पांच प्रकार, पांच प्रकार का मिथ्यात्व। हाँ बोलो, विनय मिथ्यात्व। हाँ हाँ एकांत विपरीत अज्ञान संशय विनय, ये पांच प्रकार के मिथ्यात्व है। अविरति बारह प्रकार के, अरविंदर बताएंगे अविरति कौन से बारह। छह प्राणी संयम नहीं है, ने प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम, पांच इंद्रिय और एक मन, ये बारह प्रकार की अविरति। विरत नहीं होना ये अविरति। कषाय पच्चीस, ये तो आसान है। हाँ बोलो। हाँ सोलह कषाय और नौ नौ कषाय, सोलह नौ पच्चीस, और पंद्रह योग बताना है। कौन बताए? हाँ मनोयोग चार, वचन योग चार, सात का योग। हाँ बोलो। हाँ कर्मण करना भी स्त्री चलो अच्छा यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवानी मस्तक नो सदा देत हो।